नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कहा जाता है कि ये संसार एक माया जाल है, जिसमें एक बार कोई व्यक्ति फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं ये माया जाल हर व्यक्ति खुद ही बुन बैठता है, और अगर उससे निकलने की कोशिश करता है तो वो नाकाम ही रहती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है। तो ना चाहते हुए भी उसे सहारा ढूंढना पड़ता है। अगर भगवान उसकी मदद करते हैं तो वो भगवान की जय जयकार करता है। अगर कोई व्यक्ति उसकी मदद करता है तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। तो दर्शकों, आपका शुक्रिया अदा करने का समय आ गया है, क्योंकि हम लाए हैं आवाहन कार्यक्रम आपकी समस्याओं का हल लेकर।
थैंक यू
दीदी जी। पहले की तरह हम अपने सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लेंगे शकुंतला बहन का, जो कि करनाल से उन्होंने हमें फोन किया, पंजाब से। इनका कहना है कि इनके दो बेटे हैं। 14 वर्ष पहले जब इनका दूसरा बेटा होने वाला था तो इनके पति कहीं गायब हो गए। इनकी समस्या है कि ये काम करते करते थक चुकी हैं और बहुत चिंता में रहती हैं, और चाहती हैं कि भगवान कोई चमत्कार करे और इनकी चिंता दूर हो। तो इनकी समस्या का हल हम क्या दे सकते हैं?
शकुंतला बहन जी ने जो फोन से अपनी समस्या बताई है, वास्तव में इतनी कोई भारी समस्या नहीं है। चिंता न करें, थके नहीं। आखिर आप एक माँ होकर और एक नारी होकर इतनी हिम्मत से कार्य कर रही है, वो प्रशंसा के योग्य है। और आप ये सच मानिए कि महिलाओं को नैसर्गिक रूप से ऐसी आत्मशक्ति मिली हुई है, ऐसी विल पावर मिली हुई है कि वो कैसी भी परिस्थितियों में हिम्मत रखती है। आपने ऐसे कई किस्से पढ़े होंगे जो बहने जो है, चाहे पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई को, पति को, बेटे को हिम्मत दिलाती है और समस्या को पार करने में मददगार बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आप तो स्वयं ही शक्ति हैं। आप अपनी शक्तियों को भूलो नहीं। कुदरती आप में बहुत शक्ति है, लेकिन आप इसलिए थक रही हैं, हिम्मत हार रही है, क्योंकि बार बार सूक्ष्म में आपके मन में, आपके सब कॉन्शियस में ये बात है कि भाई पति इस जिम्मेवारी से भाग गया, चला गया और मेरे ऊपर ही सारी जवाबदारी आ गई। उसके कारण आप जो कर रही है उसमें थक जाती है। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि हम भी संस्था में रहते हैं और काफी भाई बहने यहाँ सेवा में आते हैं। तो एक बार, और यहाँ तो हजारों लोगों का सब कुछ, भोजन बनाना, रोटी बनाना, सब्जियां काटना, बहुत बेहद का कारोबार रहता है। तो एक बार हमने माताओं से पूछा कि माताएं, आप तो अपने घर में 2-4-10 लोगों का खाना बनाती है, रोटी बनाती है, सब्जियां बनाती है, यहाँ तो हजारों का है, आप यहाँ थक नहीं जाती है? तो उन माताओं ने बहुत खुशी से कहा कि नहीं दीदी, हम नहीं थकते हैं। एक माता ने बोला, दीदी और ही हम घर में थक जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे घर में तो बहुत कम लोगों का काम आपको करना पड़ता है, यहाँ तो हजारों लोगों के लिए आप सब सेवा कर रहे हैं, तो घर में कैसे थकते हैं? तो उसने बहुत निखालसता से सही बात अपने मन की बता दी कि दीदी ऐसा है कि हमें करना पड़ता है और बहू बेटियां बैठी रहती है तो हम थक जाते हैं। जब वो नहीं करते हैं तो वो देख देख के हम थक जाते हैं। तो देखो, इससे क्या समझ में आता है कि जिम्मेवारी, कामकाज हमें नहीं थकाता है, पर जो मन में नेगेटिव चिंतन चलता है या जो भी बात हमारे जीवन में है उसके प्रति हमारा एक सही दृष्टिकोण नहीं होता है, तो वो करते करते थक जाते हैं। तो आपके मन में जो बात है कि भी पति हो गया, भाग गया और दो बच्चों की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई, आप अपना प्रयास भी कर रही हैं पर अब थक भी रही है, हिम्मत भी टूट रही है, तो आप एक तो मन से ये सोच निकाल दीजिए कि पति होता मदद करता, अब जब है ही नहीं, वो अपनी जवाबदारी समझा ही नहीं और भाग गए, तो अब उसके लिए क्या सोचना है। जिस हिम्मत से आपने कार्य शुरू किया है वो आप करते रहिए, अपने बच्चों को भी इसमें आप तैयार कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपके बच्चे भी युवा बन गए होंगे, इसलिए उनको भी आप अपनी मदद में ले लीजिए और वो बात सोचना ही छोड़ दीजिए कि जीवन में ऐसा हुआ, वो मदद नहीं की, वो चले गए, तो वो चीज आपकी आंतरिक शक्ति को खत्म करती रहती है। इसलिए बात बड़ी नहीं है पर हमारा सोचने का जो दृष्टिकोण है, उस परिस्थिति के प्रति जो हमारा रुख है, वो पॉजिटिव या सही ना होने के कारण जो हम करते हैं उसमें भी मन भारी रहता है और थक जाते हैं।
उनका शरीर भी साथ नहीं देता, जैसे जॉब करती हैं तो शरीर जवाब देने लगा है।
देखो, मन का तन पर भी असर आता है, छोटी सी बीमारी है पर मन से अगर हमने बड़ी ले ली है, अरे मुझे क्या हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो शरीर भी हमें कमजोर लगने लगेगा। मन मजबूत हो जाएगा तो तन में भी शक्ति आ जाएगी, इसलिए आप मन को ठीक कर लीजिए, तन भी शक्तिशाली बन जाएगा। लोगों ने बहुत बड़ी आयु तक दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, हम भी कर सकते हैं। और जरूर, जैसे आपने ये भी पूछा है कि शायद भगवान कुछ मदद कर दे,
चमत्कार
कर दे, वो जरूर मदद में है ही। आप ऐसे नहीं सोचिए कि आप अकेले कर रहे हैं, आज आप में इतनी हिम्मत से इतने साल आपने निकाले हैं तो आपके बैकबोन में भगवान है ही, वो ही एक ऐसी परम शक्ति है जो हर क्षण हर स्थान हर आत्मा का साथी बनकर के मदद कर सकती है, इसलिए वो आपकी मदद में है ही, वो चमत्कार कर ही रहे हैं, आप हिम्मत से निभा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। तो उनकी मदद जरूर मिलेगी, हमें अपना कर्तव्य करना है। देखो, भगवान चमत्कार कर दे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो करना है वो हम छोड़ दें। आखिर हम एक इस दुनिया में पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, अगर डायरेक्टर ही सब कुछ कर दे तो एक्टर को क्या करना है, सिर्फ स्टेज पर खड़ा रहेगा क्या? तो इस वर्ल्ड ड्रामा में हम आए हैं, हमारा रोल क्या है, बस वो हमें अच्छी रीति प्ले करना है। डायरेक्टर तो मदद में है ही है, जब एक्टर अच्छी एक्शन करेगा तो डायरेक्टर तो खुश होगा ही, उसकी दुआ दिल की मदद तो रहेगी ही, तो भगवान की मदद है ही, बस आप अपनी भावना अच्छी बना दीजिए, अपनी सोच अच्छी बना दीजिए और बच्चों को अपने साथी बना लीजिए।
मन ठीक है तो तन भी ठीक हो जाता है। पर दीदी, यहाँ एक और सवाल उठता है कि जैसे इतने वर्ष उन्होंने अकेले दो बेटों को पाला, बड़ा किया, तो मन को ठीक रखने के लिए हमें शेयर करने की जरूरत पड़ती है किसी से, और जहां तक इनका सवाल है तो ये अकेली लगती हैं, तो उस हिसाब से, और आजकल के बच्चे जैसे हम देखते हैं कि वो नहीं शेयर करने में बिलीव करते, खासकर माता के साथ, तो उस प्रॉब्लम को कैसे वो हैंडल करें। एक और बात दीदी जी, जैसे उनके पति गायब हुए 14 साल पहले, तो एक प्रश्न हमेशा लटकता है मन में कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, इस तरह से, तो उसको भी वो कैसे विराम दें।
दोनों बातें हैं, एक तो देखो पति के लिए अब बार बार सोचना उचित नहीं है, आप अपने मन में शुभ भावना रख लीजिए बस कि वो जब भी आएंगे, किस रूप से आएंगे, कैसे जीवन की परिस्थिति में मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे, वो जब आएंगे तब की बात है। अभी तो हम यही शुभ भावना रखें कि चलो भाई, वो जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिसके साथ में हो, वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ताकि उनके अंतर की दुआएं भी मिलती रहे। मीन्स अभी उनके बच्चे भी तो युवा हो गए हैं, तो अपने घर की समस्या बच्चों के साथ शेयर करें। आजकल बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं और वो भी हर प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, जब तक बच्चों को पता नहीं होगा वो केयर नहीं करेंगे, वो तो अपना खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। पर अगर आप उनको प्यार से बिठाकर जीवन की वास्तविकता बताएं तो मैं समझती हूँ बच्चे भी जरूर उसमें मददगार रहेंगे। इसलिए शेयर जरूर करें। पति नहीं तो क्या है, और भी तो संसार में अनेक लोग हैं, कोई पराया तो है नहीं। जहां भी आपको लगता है कि इंसान अच्छा है और कुछ पॉजिटिवली रेस्पॉन्स मिल सकता है, तो आप उनके साथ जस्ट एक गाइडेंस के रूप में भी, जैसे आज हमसे आप पूछ रहे हैं और हम शुभ भावना से मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे आप लोगों से भी पूछ सकते हैं।
ना जैसे टीनेज इयर्स में जहां तक लगता है उनके बच्चे हैं, तो टीनेज इयर्स में तो बच्चों का ध्यान बहुत जगह बंटा होता है, तो वो खुद ही इतनी प्रॉब्लम में है, तो उनको कॉन्फिडेंस में कैसे लें?
बताएं बच्चों की, देखो बच्चे आज चलो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, हम इस घर में तीन लोग हैं, हमें मिलके क्या क्या करना चाहिए, कैसे इस घर को चलाना है, मैं क्या करती हूँ आपको पता चले, कुछ भी मतलब उनके साथ बैठ के शेयर करें। खुद ही अपने मन में सोचते रहते हैं और भारी होते रहते हैं, इससे तो बेटर ये है कि आप उनसे बात करके देखें। मैंने देखा है कई बार हम आशा भी नहीं रख सकते, ऐसा सॉल्यूशन बच्चों के तरफ से भी हमें मिल जाता है। बहुत छोटी बात वो बताएंगे लेकिन उसमें बहुत बड़ा समाधान हमें मिल जाता है।
शकुंतला जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपना हल मिला होगा। माना कि आपको सबसे पहले तो ये अपने आप को रियलाइज कराना होगा कि नारी एक शक्ति है, अभी तक आपने चलाया तो आगे भी आप चला सकते हैं। दूसरा, अपने मन को स्वस्थ करना होगा ताकि आपका शरीर भी आपका साथ दे।
और कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ आयु होने पर लोग सोच लेते हैं कि अब कहाँ तक करना है, अब तो मेरे रिटायर्ड होने का है। तो रिटायर्ड होने का अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है, रिटायर्ड होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि चेंज करना है। जो वर्षों से आप नौकरी कर रहे थे, प्रवृत्ति कर रहे थे, उसके बजाय अब चेंज लाना है उस प्रवृत्ति में। जो आप चाहते हैं कर सकते हैं वो चीजें करने का अब टाइम है। तो एक तो हम वर्ष गिनती करते रहते हैं, कुछ आयु होने पर हम मन ही मन निर्णय कर लेते हैं कि अब कब तक मैं करूं, अब तो मेरी रिटायर्ड होने की। ऐसा नहीं सोचे, जीवन के अंत तक हमें शक्तिशाली रहना है और उमंग से अपना कर्तव्य करते रहना है। और जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें अगर आप आनंद का अनुभव करेंगे, खुशी से करेंगे, तो मैं समझती हूँ थकेंगे नहीं। हम समझते हैं खुशी के लिए हमें और कुछ करना है और ये जो गृहस्थी के लिए कर रहे हैं वो एक बर्डन है। ऐसा नहीं सोचे, जो हम कर रहे हैं उसी में आनंद पाने का लक्ष्य रखें।
क्योंकि दीदी, देखा गया है समाज में जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है उनको देखकर और भी हीन भावना आती है, तो उस
जैसे स्ट्रक्चर तो आज टोटली कितना चेंज हो गया है। कुछ बातें हम पुरानी पकड़ के रखते हैं और कुछ बातों में जो चेंज आया है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो हम अपने जो मेंटल हमारा सेटअप है उसमें भी तो चेंज ला सकते हैं। चलो अब तक लोग इस प्रकार रिटायर्ड होते थे, दूसरे जवाबदारी संभालते थे, कोई जरूरी नहीं है कि हरेक को ऐसे ही करना है। हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन ला सकते हैं। आज तो टोटल कितना परिवर्तन हो गया है।
तो दीदी जी, एक और सवाल इसमें उठता है कि शकुंतला बहन अपने अकेलेपन को कैसे दूर करें?
अकेलापन कैसे वो महसूस कर रहे हैं, जबकि काम भी कर रहे हैं, तो जहां काम कर रहे हैं वहां भी लोग उनके साथ हैं, घर में भी बच्चे हैं, आसपास भी लोग रहते हैं। अकेलेपन इसलिए महसूसता होती है कि किसी पर्टिकुलर को हमने मेरा समझ लिया है, बाकी को मेरा नहीं समझा है। इसलिए जब वो नहीं है तो हम समझते हैं हम अकेले। मानवता की दृष्टि से देखा जाए, हम पूरी मानव जात एक परिवार है, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, विश्व एक कुटुंब है, परिवार है। तो हम हरेक से अगर आत्मीयता रखते हैं तो हमें अकेलापन कैसे महसूस होगा? हमारे आसपास जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग रहते जो भी है, अगर हम सबसे आत्मीयता से चलेंगे तो लोग भी हमारे से आत्मीयता से चलेंगे। पर हमने अपने मन में एक चीज बना ली है कि वो पति चला गया माना मैं अकेली हूँ,
एक बात कह जाती है
तो नहीं, चलो वो चले गए, आपका तो कोई दोष नहीं है, उनके अपने संस्कार है, उनका अपना सोच है, और भी हमारे अपने हैं, सब अपने हैं। अगर इस आत्मीयता से हम चलेंगे तो अकेलापन नहीं लगेगा। और आप छोटी छोटी आसपास की समाज सेवाओं में, छोटी मोटी प्रवृत्तियों में बच्चों को लेकर के आप खुद उसमें शामिल हो जाइए, तो इससे आजकल तो मैंने देखा हर संस्था में, ऑफिस में, कंपनीज में भी वो लोग वहां काम करने वाले लोगों के सोशल साइड को भी ध्यान रखते हैं कि ताकि उनको वो फीलिंग आवे, उसके लिए वो लोग गेट टुगेदर करते हैं, आपसी संबंध बनाते हैं। इस प्रकार हर समाज का, धर्म का, सोसाइटी माना जहां हम रहते हैं उस गली मोहल्ले का भी होता है, आप इन्वॉल्व हो जाइए, मन से वो बात निकाल दीजिए, आप अकेले हैं, अकेले नहीं है, भगवान तो आपके साथ है ही है, आपका भाग्य भी अपने साथ है, बच्चों का भाग्य भी आपके साथ है, और आसपास में भी लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो जरूर साथ देने वाले होते हैं। संसार में मैंने देखा है कि अभी भी मानवता जीवित है जो कहीं कहीं दर्शन दे देती है, टोटल मानवता मर नहीं चुकी है, इसलिए आप खुद आशावादी बनिए और लोगों से हिल मिल जाइए, और जो करना है आप गांठ बांध लीजिए, मुझे अंत तक मेरे से जो हो सकता है मुझे करते रहे।
जैसे कहा जाता है समय के साथ हर चीज बदलती है, तो खुद को बदलने में ही समझदारी है। और जैसे दीदी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आज दिन अगर हम देखें तो वर्क प्लेसेस पर भी वो ऐसे एक्टिविटीज करते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं वो खुश रहें, तो ये सुझाव आप अपने वर्क एरिया में दे सकती हैं ताकि आपका मन भी ठीक रहे। दीदी जी अगला सवाल हम लेते हैं नीरू बहन का, जिन्होंने हमें फोन किया है करनाल से। सर से इनका कहना है कि 12 साल पहले इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया किसी और महिला की वजह से, और 8-9 साल तक इनके पति विदेश में रहे, माना ये अकेली रही तब से लेकर अब तक, और अभी भी ये अकेली रहती हैं। और इनका सवाल है कि इनको क्या करना चाहिए, माना इनको उनसे डिवोर्स लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? कभी कभी ये अपने माता पिता के यहाँ जाती हैं पर रहती अकेली हैं।
देखिए जैसे नीरू बहन पूछ रही है उस हिसाब से तो पहले भी 8 साल पति विदेश रहा तो वो यहाँ अकेली रही, और उसके बाद 12 साल से शायद वो कोई और स्त्री के संपर्क में आ गए हैं तो इनको छोड़ दिया है। आपको तो हम धन्यवाद देंगे कि आपने इतना सब्र रखा अपने आप में, इतनी हिम्मत रखी, इतने साल तक आप उसका इंतजार करते रहे हैं। सच में भारतीय नारियों के लिए मस्तक झुक जाता है कि उसके अंदर कितनी धीरज हिम्मत आज भी है। अब जबकि 12 साल के बाद भी उनके तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि अब आपको उससे ही सिर्फ आशा न रखकर अब अपने जीवन के लिए और कुछ सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप माँ बाप के पास जाते हैं, रहते हैं, मीन्स आपके माँ बाप अच्छे हैं, भाई बहन अच्छे हैं जो आपको रख रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आपके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, पर अब आपको जरूर कोई डिसीजन ले लेना चाहिए।
दीदी जी इनका कहना है कि इनको डर लगता है डिसीजन लेने में, खासकर डिवोर्स लेने में, और इनके बच्चे भी कोई नहीं है, तो इनको एक डर है कि मैं अगर डिवोर्स लूंगी तो क्या होगा, क्योंकि ये माता पिता के साथ रहती नहीं है, अकेले रहती है, कभी कभी जाती है।
हाँ तो अभी भी तो अकेली ही रह रही है ना?
वो एक लेबल है कि वो मैरिड है।
हाँ अच्छा, डिवोर्स लेना वो तो अब खुद को ही निर्णय करना होगा, क्योंकि 12 साल से तो पति की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब मिल ही नहीं रहा है ना, तो आखिर कब तक उसमें आंख लगा के बैठे रहेंगे। शादी तो चलो डिवोर्स करना और फिर और शादी करना वो तो एक आगे की बात है, पर मैं समझती हूँ इतने साल आपको कोई ना कोई एक्टिविटी में तो एंगेज हो ही जाना चाहिए। सिर्फ उसी आशा में कब तक हम हाथ पर हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे? हमें अपना समय अपनी शक्ति को भी तो सफल करना चाहिए। तो पहले तो आप कोई ना कोई चाहे पढ़ाई कर लीजिए, छोटी मोटी कोई कला सीख लीजिए या कोई नौकरी ढूंढ लीजिए और इस प्रकार अपनी कमाई का कोई साधन बना लीजिए। अब 12 साल से आप अकेले रह रहे हैं तो आप कैसे अपना निर्वाह कर रहे हैं? क्या पियर घर से कुछ मदद है, ससुराल घर से मदद है, क्या है? वो क्लैरिटी बहन ने नहीं की है, पर अब समय निर्णय लेने का ही है। आपको दृढ़ता से इस वास्तविकता को समझकर अब ज्यादा आश लगा के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। निर्णय लेके आप पहले तो अपने आप को एंगेज कर दीजिए कोई अच्छी प्रवृत्ति में, अच्छी सेवा में, कोई अच्छी पढ़ाई नौकरी सीखने में, और फिर आप डिसीजन लेके। आपकी इतनी आयु भी नहीं, आजकल तो हर आयु में कोई ना कोई कंपेनियन मिल ही जाता है, तो आप उसके लिए प्रयास करिए। आप बहुत अच्छी व्यक्ति नजर आ रही है, क्योंकि इतने साल पति के तरफ से कोई जवाब न मिलने पर भी आप हिम्मत से जी भी रहे हैं और आश भी लगा के बैठे हैं। लेकिन हर बात की एक सीमा होती है, उस सीमा में हमें निर्णय कर लेना चाहिए और दिशा में लग जाना चाहिए।
जहाँ डिवोर्स का लेबल लगता है तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठती ही हैं।
नहीं, इसलिए देखो 12 साल आप कैसे रहे, अकेले ही रहे ना, ये तो जस्ट एक नाम का संबंध रहा, प्रैक्टिकल में क्या साथ रहा और क्या मदद रही। और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि पहले आप अपने पांव पर खड़े हो जाइए, कोई प्रवृत्ति में एंगेज हो जाइए, चाहे माँ बाप के नजदीक में कहीं अपना मकान लेके रूम लेके आप रहिए, ताकि साथ भी मिलता रहे और आप अपना व्यक्तिगत भी जी सके, तो उस रीति से कर लीजिए। पर डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। आज संबंध होते हुए भी कुछ भी नहीं है और आप दूसरे संबंध के लिए तैयारी करिए। चलो डिवोर्स करके अकेले रहने में आप इस प्रकार सोच रहे हैं तो साथ में दोनों प्रकार की तैयारी कर लीजिए, एक नया कंपेनियन भी ढूंढिए, माँ बाप को भी बताइए और कुछ अच्छी प्रवृत्ति में आप एंगेज हो जाइए।
पर दीदी, वो डर कैसे खत्म करें अकेले रहने का और वो डिवोर्स के लेबल का?
नहीं, अकेले नहीं है ना, माँ बाप साथ है, समाज साथ है, तो मदद तो हमें खुद ही खुद को करनी है अपने शक्तिशाली विचारों से। कोई पुरुष ही मदद करेगा ऐसा नहीं है। आप स्त्री है, इस भान से ऊपर उठिए, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को आत्मा समझिए। आप एक शक्ति है, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, आप तो इस शरीर को धारण करने वाली एक चैतन्य शक्ति है, एक लाइट है, एक माइट है। अगर ये चिंतन अभ्यास मेडिटेशन आप करें और अपने में पावर भरें, तो मैंने देखा है हम दूसरों की मानसिकता को भी बदल सकते हैं और साथ साथ व्यावहारिक दृष्टि से प्रवृत्ति में भी एंगेज हो जाइए और दूसरे संबंध के लिए भी आप खुद भी तैयारी करें, माँ बाप को भी बताएं ताकि वो भी मदद कर सके।
नीरू जी, जैसे कि हमने सुना कि आपको अपनी जीवन को एक नई दिशा देना ही पड़ेगा, ये डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, और रही जहां तक डर की बात, वो भी आपको खुद ही खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई संस्था ज्वाइन कर सकती हैं या कोई नया कंपेनियन ढूंढ सकती हैं, माना कितने तरीके हैं खुद को सशक्तिकरण करने के लिए। दीदी जी, बहुत सुंदर, फिर से आपने बहुत सुंदर हल दिया हमारी समस्याओं का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
अगली कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत पूजा को, नमस्कार।